ओम शांति। आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस, और आप सभी यहाँ जो उपस्थित है इस समय, वो सभी पर्यावरण के सच्चे मित्र, सक्षम प्रहरी यहाँ बैठे हैं। आप सभी के जीवन का पर्यावरण के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि किसी न किसी रूप से आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर। देश का किसान जब समृद्ध होता है, सशक्त होता है, चरित्रवान होता है, उसके जीवन की मूल्य श्रेष्ठ होते हैं, तब सारे देश का विकास होता है। और देश ही नहीं, परंतु ये जो ध्वनि है वो सारे विश्व में फैलती है। आज विश्व बहुत छोटा हो गया है। विश्व के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, उसका असर सारे विश्व पर देखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ ज्ञान हम सुनते और समझते आ रहे हैं, उससे आप सभी ने महसूस किया होगा कि हमारी संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है। जैसी हमारी सोच होती है, विचार होते हैं, वैसी ही हमारी वृत्ति होती है। वृत्ति का मतलब है एटीट्यूड। और जैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसी ही हमारी दृष्टि होती है ना, देखने का नजरिया बनता है। वैसे ही हमारे बोल होते हैं, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और उसी के आधार से हमारा व्यक्तित्व निश्चित होता है। तो विचार है हमारे सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्तित्व का बीज। आप सभी बीज का महत्व जानते हैं। बीज कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसान को अगर अच्छा शक्तिशाली बीज न मिले, तो कितनी भी मेहनत कर लो, जो भी उपजेगा उसमें वो ताकत नहीं होगी। इसलिए आप सभी ने पिछले कुछ दिनों से ये भी बात सुनी होगी कि बीज को कैसे सशक्त बनाया जाए, योग से उसको अच्छे वाइब्रेशन देकर कैसे सशक्त बनाया जाए। तो बीज पर जब हम काम करते हैं, तो आगे उसकी सारी रचना, बीज से जो जमीन के साथ संबंध होता है बीज का, वो सारी रचना श्रेष्ठ बनती है और एक नहीं अनेकों के उपयोग में आती है। वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन का बीज है हमारे विचार, हमारे संकल्प। जो कुछ भी हम सोचते हैं, उसका असर सबसे पहले हमारे शरीर पर होता है। शरीर को प्रकृति कहा जाता है ना, शरीर को प्रकृति कहते हैं। क्यों शरीर को प्रकृति कहते हैं? क्योंकि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बनाया है। और विचार, जो भी कुछ हम करते हैं, उन विचारों का इस प्रकृति पर सबसे पहला असर होता है। तो अगर विचार हमारे सकारात्मक, शक्तिशाली, रचनात्मक, सृजनात्मक और सुव्यवस्थित हो, तो हमारे शरीर के सारे, शरीर के साथ जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य। हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो मन से भी उदास हो जाते हैं। तो मन के साथ, विचारों के साथ हमारी शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध है। तो बीज अगर सुदृढ़ सशक्त होता है तो शरीर शारीरिक स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होता है। और फिर हम जैसे विचार करते हैं उसके वाइब्रेशन का एक ऑरा, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास क्रिएट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो कोई भी आते हैं, चाहे वो प्रकृति के पांच तत्व हो या चाहे कोई और मनुष्य या प्राणी हो, उनको उस सशक्त सकारात्मक वाइब्रेशन का फायदा मिलता है, अपने आप मिलता है। हमको विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हम विचारों से सकारात्मक और शक्तिशाली है तो हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा बनता है। फिर आप घर में रहे, परिवार के साथ रहे, बाहर रहे, समाज में लोगों के साथ रहे, लगभग आप सभी का कार्यक्षेत्र खेती, अगर उस जमीन पर भी हम जाए उस सशक्त मन से, तो उस जमीन पर भी उसका असर होता है, और वो प्रकृति रिटर्न में हमें कई गुना अधिक देती है। हमने आज तक ये अनुभव किया है कि प्रकृति साइलेंटली हमें बहुत कुछ दे रही है। आवाज नहीं करती है प्रकृति ज्यादा, शोर नहीं होता है उसका, लेकिन बिना शोर किए वो हम सभी मनुष्य आत्माओं को, प्राणियों को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ दे रही है। चाहे जनसंख्या कितनी भी बड़ी है, लेकिन सारे विश्व का एक भी व्यक्ति भूखा न रहे इसका प्रबंध प्रकृति ने कर रखा है। परंतु हमारे बीच में कुछ लोग क्यों भूखे रहते हैं? इसका कारण है इंसान का लोभ और लालच, संग्रह प्रवृत्ति। एक व्यक्ति अगर अपने पास जरूरत से ज्यादा संग्रह करके रखता है तो दूसरा कोई जरूरतमंद उस समय भूखा होता है। ये सही है? सही है। जरूरत से ज्यादा जो भी हम संग्रह करते हैं उसके कारण किसी न किसी को तकलीफ होती है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम प्रकृति के कुछ नियमों को भी समझेंगे। आज का जो विषय है हमारा वो काल चक्र के बारे में है। हम सभी काल चक्र के खिलौने हैं जो उस चक्र में चलते जा रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको उस काल चक्र का रहस्य बताते हैं, सीक्रेट्स बताते हैं। जिन सीक्रेट्स को जब हम समझते हैं तब अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी ने पहले दिन आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन का लेसन किया। उस लेसन में आपने, हम सभी ने समझा कि मैं कौन हूं। मिला जवाब सभी को? मैं कौन हूं इसका जवाब मिला? कौन है हम? बिल्कुल पक्का आत्मा ही है ना? हाँ। और मैं आत्मा हूं और मेरा क्या है? ये शरीर मेरा है, ये प्रकृति मेरी है, मुझे इसे संभालना है। लेकिन मैं कौन हूं? अच्छा, ये आत्मा कैसी है? कैसी है? बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और कैसी है आत्मा का मूल स्वभाव? क्या है? शांति। ये तो समझ लिया हमने। क्या भीतर से आत्मा के उस शांति स्वरूप का हमने अनुभव किया? गए हम अपने भीतर और उस शांति को टच किया हमने? ये योगाभ्यास है कि बाहर की दुनिया से अपने सारे ध्यान को समेट कर हम अपने भीतर चले जाए और उस शांति को भीतर से महसूस करें। दूसरा संस्कार क्या है आत्मा का? शांति के साथ प्रेम। उस शांति और प्रेम को हम भीतर से महसूस करें और फिर बाहर आए। देखिए, शिक्षा की दो तरह की पद्धतियां हैं, एक बाहर से भीतर की ओर और दूसरी है भीतर से बाहर की ओर। कौन से पद्धति को योग कहा जाता है? बाहर से भीतर की ओर या भीतर की अनुभूति से बाहर की ओर? भीतर की अनुभूति से बाहर की ओर कनेक्ट करना। तो अगर शांति और प्रेम आत्मा का निजी स्वभाव है, गुण है, तो कर्म में शांति और प्रेम को कैसे लाना है? कैसे लाना है? क्या कर्म में भी हम शांति और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारी दृष्टि, वृत्ति, उसमें शांति की शक्ति समाई हुई हो। विश्व में सभी लोग, सभी देश चाहते हैं कि हमारा विश्व कैसा हो? शांत हो, विश्व में शांति स्थापन हो। लेकिन उनके पास क्या तरीका है शांति स्थापन करने का? विश्व में जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोग शांति स्थापन करना चाहते हैं, उनके पास शस्त्र का तरीका है। शस्त्र का उपयोग करके वो शांति स्थापन करना चाहते हैं और हम आत्मबल के इस्तेमाल से शांति स्थापन करना चाहते हैं। कहा जाता है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। विश्व में अगर शांति लानी है तो शांति की अनुभूति मुझे अपने आप में करनी होगी। प्रेम, अगर सारे विश्व को प्रेममय बनाना है, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बदले की भावना और क्रोध को मिटाना है, तो प्रेम का अनुभव मुझे भीतर से करना होगा और फिर बाहर में वो मेरे कर्म और बोल में प्रेम सबको महसूस होगा। निस्वार्थ, यूनिवर्सल लव की बात यहां हम करते हैं। तो पहले दिन आत्मा का लेसन किया और हमने आत्मा के एट्रीब्यूट्स, आत्मा के निजी गुण, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, इनके बारे में जाना। अब इनको हमें भीतर से अनुभव करना है और कर्मों में उन्हें लाने का अभ्यास करना है। दूसरे दिन आपने परमात्मा का परिचय लिया। मिला सबको परमात्मा का परिचय? मिला? कौन है? कौन है परमात्मा? कौन है? जैसे आत्मा ज्योतिर्मय बिंदु रूप शक्ति है, वैसे परमात्मा भी आत्मा ही है, बिंदु ज्योति स्वरूप ही है, लेकिन उन्हें परम कहा जाता है क्योंकि वो सारे विश्व की आत्माओं के पिता है। और जो हमारे सात गुण हैं, उन गुणों के वो सागर है, सूर्य है, शांति और प्रेम। अगर मुझे चाहिए तो मुझे कहां से लेना है? शिव बाबा से लेना है। और उसके लिए क्या तरीका है? कि मैं अपने आप को आत्मा समझूं और एक सेकंड में मन की उड़ान भरकर परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाऊं परमधाम में, और उनसे जो शांति, प्रेम, आनंद की शक्ति की किरणें मिल रही है उनको अपने आप में भरूं और वो भर कर मैं वापस आऊं। ये है राजयोग का अभ्यास। डायरेक्ट मेरे मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो परमात्मा का नाम शिव है, सभी को मान्य है? मान्य है। परमात्मा का रूप बिंदु ज्योति स्वरूप है, सभी को मान्य है? परमधाम उनका निवास स्थान है। परमात्मा हमारे पिता है, शिक्षक है और गुरु है, ये सभी को मान्य है। जाना, माना, अब अनुभव में लाना है कि कैसे है। जब हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तब हमें उनसे शक्तियों का अनुभव अपने जीवन में मिलता है, और जब हम उन शक्तियों के साथ जीवन जीने लगते हैं तो हम अपने जीवन में जादू होते हुए देखते हैं। होता है, किसी को है अनुभव? परमात्म शक्तियों का जीवन में उपयोग करने से हम अपने जीवन में जादू कर सकते हैं। कौन से जादू? जो सोचा वही हुआ। तो आज एक प्रश्न है हम सबके सामने, क्या हम सभी को अपने आप पर, मैं आत्मा हूं, इस बात पर विश्वास है? हाथ खड़ा करें। सबको है? ओके। दूसरा सवाल, हम सभी आत्माओं का, चाहे शरीर के जो भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी आत्माओं के पिता एक परम पिता है, इस बात पर सभी का निश्चय है? हाथ खड़ा करें। निश्चय है, एक परम पिता है, निराकार ज्योति स्वरूप, उनका नाम शिव है, वो मेरे पिता है, इसलिए मैं उनको शिव बाबा कहती हूं। अगर ये दो निश्चय पक्के हैं, तब आज का लेसन हम आगे कर सकते हैं, है ना, काल चक्र। तो परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन के आधार से आकर हमें प्रकृति के, काल के चक्र का रहस्य समझाया, जिसको विश्व नाटक कहा जाता है। अक्सर बाबा अपने महावाक्यों में उसे ड्रामा कहते हैं। तो दो बिंदी तो हमें समझ में आई, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। आज हम तीसरे बिंदु की बात करेंगे, पॉइंट, फुल स्टॉप। बिंदु का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम, है ना, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। पूर्ण विराम माना इसके बाद कुछ नहीं, फिनिश, कंप्लीट, समाप्त। तो आज जब हम ड्रामा का रहस्य समझेंगे, सृष्टि नाटक का रहस्य समझेंगे, तब उसे अपने जीवन में हर वक्त फुल स्टॉप कैसे लगाना है, बिंदु कैसे लगाना है, ये बात हमें समझ में आएगी। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर दो लोगों की बहस हो जाती है, बहुत हॉट डिस्कशन हो जाता है, और दोनों फिर अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, दोनों के मन में क्या चलता है? उसी बात का चिंतन चलता है, मैं सही था, उसने मेरे साथ बहस की। वही बात कितने समय तक हमारे मन में चलती है? पूरा दिन, दो दिन तक, तीन दिन तक, कई बार वो बात सालों तक मेरे मन में बनी रहती है। जब भी वो व्यक्ति सामने आता है, फिर से वो जागृत हो जाती है बात, और मैं उस व्यक्ति से फिर से दूर चला जाता हूं। तो शिव बाबा कहते हैं अपने महावाक्यों में कि बात में इतनी अकल है, समय में इतनी अकल है कि वो पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, लेकिन हम उस छोटी सी बात को अपने मन में, दिमाग में कितने ही समय तक ताजा रखते हैं, और उसी बात का असर बार बार होता है। तो यहां क्या करना है? तीसरे बिंदी का इस्तेमाल करना है, वो है क्या बताया आपने? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, मन में ये बात हमें बार बार दोहरानी, फुल स्टॉप। जो कुछ बीत गया उसे फिनिश, खत्म करो। आज विश्व में मानसिक बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और जो भी शारीरिक बीमारियां भी हैं, उनका भी अगर रूट में जाते हैं तो डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि 99% बीमारियों का कारण है मानसिक अशांति, तनाव, स्ट्रेस। और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि समय पर हम किसी भी चीज को खत्म नहीं करते हैं, खींचते रहते हैं, फिनिश। आज के दिन में जो कुछ भी हुआ, अगर रात में हम उसका हिसाब किताब कंप्लीट करें और चैप्टर क्लोज करें, फाइल्स क्लोज करें और फिनिश्ड कंप्लीट करके हम साइट में रख दे या खत्म कर दे, तो कल के लिए वो बात कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ये है फुल स्टॉप लगाना। तो इसके लिए ड्रामा के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के पांच तत्व जो है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, प्रकृति अपने निश्चित नियमों के आधार से चलती है। पहले दिन से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हम सभी को, उसमें हमने इतना तो समझा कि प्रकृति का पहला नियम है क्या है, प्रकृति से कोई भी चीज बनती है उसे बनने के लिए निश्चित समय लगता है, बनने के बाद वो उसका जीवन काल आरंभ होता है, वो जीवित रहती है कुछ निश्चित समय तक, और उसके बाद एंड, फिनिश निश्चित होता है। जिस समय निर्माण होता है उसी समय अंत का काल निश्चित होता है, है ना। अगर हम अपने आप को देखें, मनुष्य शरीर की रचना संपूर्ण रीति से होने के लिए माता के गर्भ में उसे 9 महीने लगते हैं रचना के लिए, है ना। उसके साथ आत्मा भी कुछ समय बाद शरीर के साथ जुड़ जाती है और दोनों मिलकर 9 महीने के अंदर अपने आप को संपूर्ण स्थिति में ले आते हैं कि निर्माण का कार्य हो सके। जन्म होता है, जन्म के की तिथि और तारीख क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, बर्थडे हम मनाते हैं। जब भविष्य वक्ता जो है वो भविष्य के बारे में कैलकुलेशन करते हैं तो पूछते हैं कौन से समय पर आपका जन्म हुआ, कौन सी डेट में आपका जन्म हुआ, कि क्योंकि उस अनुसार नक्षत्र हम सब के साथ जुड़ जाते हैं। तो जन्म का जो समय है, तारीख है, उसी समय इस शरीर का कब अंत होगा, कैसे होगा, यह भी निश्चित हो जाता है, होता है कि नहीं। हम में से कोई है जिसका शरीर अमर है, खत्म नहीं होगा, है। सभी के लिए मृत्यु निश्चित है, किसी का 60 साल की उम्र में है, 70 की है, 80 की है, 90 की है, और जो इस समय कलयुग चल रहा है उसमें अचानक का नियम है कि किसी भी उम्र में कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। क्या हम में से कोई उसे टाल सकता है, नहीं। तो प्रकृति का पहला नियम है क्रिएशन, सस्टेनेंस और समाप्ति, एंड। चाहे वो एक बीज भी हम जमीन में बोते हैं वो भी अपने आप को बड़ा करने में, फल देने में टाइम लगाता है, और जब उसके फल आते हैं उसका भी एक निश्चित काल होता है, उसके बाद वो खत्म होता है। तो प्रकृति का पहला नियम है बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, समाप्ति निश्चित है। क्या आत्मा भी प्रकृति का हिस्सा है, आत्मा के साथ भी ये नियम जुड़ा हुआ है, नहीं। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी शक्ति है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन प्रकृति से बनी हुई कोई भी चीज उसका अंत जरूर होता है या परिवर्तन होता है, समाप्त नहीं होती है पूरी तरह से लेकिन परिवर्तन होता है। तो इसको एक साइकिल, एक चक्र कहा जाता है। सुबह होती है, हर रोज होती है, सूरज उदय होता है, दिन आगे बढ़ता है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात, डार्कनेस होती है, दिन खत्म हो जाता है, है ना, और फिर से नया दिन शुरू हो जाता है। तो दूसरा नियम है प्रकृति का कि शुरुआत, निर्माण, सृजन, सस्टेनेंस और अंत के बाद फिर से नए से प्रकृति अपने आप को नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ती है। तो फिर से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज प्रकृति में जो भी होती है वो रिपीटेशन होती है। काल चक्र को आप देख रहे हैं कि समय, जो समय आज सुबह 4 बजे आया था, कल सुबह 4 बजे फिर से वही समय आएगा, ये प्रकृति का फिर से का नियम है। तो एक साइकिल जो प्रकृति का होता है, चक्र जो होता है, प्रकृति जो निर्माण करती है, निभाती है और खत्म करती है, वो एक साइकिल 4 अवस्थाओं से गुजरता है। चाहे वो मनुष्य चक्र की बात करे, जन्म और मृत्यु के बीच के एक चक्र की बात करे, दिन और रात के 24 घंटे के एक चक्र की बात करें, हर काल का चक्र जो है चार अवस्थाओं से गुजरता है। उन चार अवस्थाओं के चार नाम हम दे सकते हैं उनकी स्थिति के अनुसार। तो सबसे शुरुआत की, किसी भी चक्र की शुरुआत होती है, उस समय को सतो प्रधान समय कहा जाता है। कौन सा समय? सतो प्रधान। जब दूसरी अवस्था में प्रकृति पहुंचती है तो उसे सतो सामान्य समय कहा जाता है। कौन सा समय बोलिए? सतो सामान्य। तीसरी जो स्थिति है प्रकृति के किसी भी चक्र की, जब वो पहुंचता है तो उस स्थिति को रजो प्रधान समय कहा जाता है। कौन सा समय? और अंतिम जो अवस्था होती है किसी भी चक्र की, उसे तमो प्रधान समय कहा जाता है। कौन सा समय? अब सतो प्रधान सबसे श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध और शक्तिशाली समय। सतो सामान्य, सतो में सामान्यता आ गई, थोड़ा सा उसकी शक्ति कम हुई। रजो प्रधान समय 50%, सतो में इतनी सामान्यता आ गई कि वो 50% तक रह गई। और तमो प्रधान समय मतलब कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट अशुद्धि, गिरावट, वो समय। तो अगर हम जन्म और मृत्यु के बीच के एक चक्र को देखें तो बचपन को क्या कहेंगे? सतो प्रधान। क्यों कहेंगे? बचपन कैसा होता है? निश्चिंत, पवित्र, शुद्ध। तो बचपन को हम कहते सतो प्रधान समय, सबसे जीवन की श्रेष्ठ अवस्था। कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। बचपन वो होता है जहां हम जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, और वो भी निरागसता के साथ। छोटा बच्चा जो होता है, अभी उसने बोलना चलना भी नहीं शुरू किया, हम कहते हैं ये तो साक्षात दैवी स्वरूप है, पवित्र है, शुद्ध है, फरिश्ता है, एंजल है। तो वो सतो प्रधान समय है। उसी तरह दिन की जब शुरुआत होती है तो अमृत वेले का समय। आप सभी यहां आए, रोज अमृत वेले योग करने के लिए आए ना, आए ना? हाँ, 4 बजे के बाद का समय खासकर अमृत वेला, शुद्ध समय कहा जाता है, जब प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ, पवित्र और शुद्ध स्थिति में होती है। फिर आता है दूसरा समय, दिन आरंभ होता है 9 बजे के बाद, दोपहर 1-2 बजे या 3 बजे तक जो समय होता है उसको हम कहते हैं सतो सामान्य समय। सुबह जो मन की, शरीर की स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसनी शुद्ध, शांत और शक्तिशाली अवस्था दिन भर नहीं रहती है। दिन में हम काम काज के कारण कार्य व्यवहार में आते हैं, तब वो शांति, वो शक्ति, वो पवित्रता, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और फिर शाम का समय आ जाता है, सारे दिन काम काज करके हम थक गए, तो वो रजो प्रधान समय हुआ। और फिर रात, रात है डार्कनेस, अंधेरा। सुबह जहां हम सभी अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की पूजा है, उन्हें याद करना है, दान करना है, पढ़ाई करनी है, सारे काम अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय किए जाते हैं, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है, उस समय हम जो कुछ करते हैं उसमें शक्ति कम लगती है और सफलता ज्यादा मिलती है। इसीलिए किसान भी कब जाते हैं खेती में? सुबह सुबह जाते हैं ना, क्योंकि धूप कम होती है। सुबह जितना काम हम 1 या 2 घंटे में कर सकते हैं, वो दोपहर में धूप के समय 4-5 घंटे भी लगकर वो काम नहीं होगा। इसीलिए सुबह का समय सतो प्रधान, फिर बाद में आता है सतो सामान्य, और तीसरा समय शाम का रजो प्रधान, निवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अंधकार की तरफ हमारा दिन जा रहा है, समय जा रहा है। और अंधकार रात का समय वो होता है या तो लोग सो जाते हैं, जो लोग आध्यात्मिकता को जीवन में महत्व देते हैं, फॉलो करते हैं, वो रात में 10 बजे के बाद विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, उस समय काम नहीं करते हैं। और अगर कोई रात में जागता है तो उसे क्या कहते, क्या निशाचर उल्लू की तरह जाग रहे हो। हाँ, लेकिन आप सभी को वास्तविकता तो पता ही होगी ना, आजकल सब कुछ उल्टा हो गया है। आजकल की नई पीढ़ी रात में जागती है और दिन में सोती है। अब सोचिए, रात में जागकर जो भी कोई काम कर रहे होंगे कैसा काम होगा, जो काम छिपा कर करना पड़े वो काम रात में करना है, लोगों की नजरों से बचकर छिपा कर करना है वो काम रात में होते, इसीलिए रात को तमो प्रधान कहा जाता है। तो आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर व्यक्ति के हाथ में एक खिलौना आ गया है, जिस खिलौने में सारे विश्व के साथ जुड़ने की शक्ति है। परंतु वो शक्ति कब हानिकारक होती है, जब हम उसे बेसमय और उसका अधिक इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तब वो शक्ति। तो आजकल की युवा पीढ़ी रात में बहुत सारे ऐसी चीजों के साथ जुड़ जाती है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हर रोज खतरे में जा रहा है। तो प्रकृति स्विच ऑफ करती है रात को, 7 से 8 के बीच में अंधेरा हो जाता है, और वो समय हमें निर्देशित करता है कि अब रिटायरमेंट का समय, अब सो जाना है। अब कितने लोग हैं आप में से जो रात को जागते हैं देरी तक, या जिन्हें नींद नहीं आती है, हाथ खड़ा करें। नींद नहीं आती है, ये हो रहा है। ये आयरनी है कि रात में लोगों को बिस्तर पर जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन यहां बैठ के कुछ अच्छी बातें सुनेंगे डोज करेंगे नींद आएगी। क्योंकि अच्छी बातें सुनते समय नींद क्यों आती है, क्योंकि एक तो रात में नींद से ठीक से नहीं हुई है, और अच्छी बातें हमारे मन को विश्राम देती है, रिलैक्स करती है। जो ज्ञान की बातें हैं वो मन को रिलैक्स करती है, इसीलिए जब कुछ मुरली सुनते हैं या कुछ अच्छी बातें ज्ञान की सुनते तो नींद आती है, मन और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं। तो कितने लोग हैं यहां जो चाहते हैं हम रात में सोना चाहते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि सभी चाहते हैं रात में सोना, लेकिन हम जागते हैं, कारण बताते हैं, इस वजह से हम जाग रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे, कौन रात में जागते हैं, कौन सा जानवर रात में जागता है, उल्लू उल्टे लटके हुए है। तो खैर, तो प्रकृति का नियम है। उसी तरह जीवन में भी 4 समय आते हैं, बचपन आता है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था हमें याद दिलाती है कि अब हम अंतिम समय की ओर, तमो प्रधान शरीर हो जाता है और अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं। शरीर में वृद्धावस्था आती है, आत्मा भी वृद्ध होती है, आत्मा वृद्ध महसूस करती है, क्योंकि शरीर वृद्ध होता जा रहा है, अब हम पहले जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें, सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं, तो शरीर कितना भी वृद्ध हो, आत्मा उसी शक्ति के साथ काम कर सकती है। उसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं, हमारी दादी जानकी जी 104 वर्ष की उम्र तक जीवित रही और अंत तक उन्होंने सेवा की। शरीर में चाहे जो भी कष्ट थे, दादी गुलजार जी, जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने हमें ज्ञान सुनाया, उनको भी हमने देखा 1989 में या 88 के करीब उनको कैंसर हुआ, शरीर को कैंसर हुआ, आत्मा को नहीं। और कितना समय तक 88-89 से लेकर 2017 तक वो बिल्कुल निश्चिंत अच्छी तरह से उनके शरीर के साथ उन्होंने सेवाएं की, और उसके बाद 2-3 साल फिर भी आराम के बाद फिर उन्होंने परमात्मा की याद में अपना पवित्र देह त्याग दिया। तो हमारे सामने ये एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से ये जो सृष्टि नाटक है, इस नाटक में भी चार समय आते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान समय। जब सृष्टि नाटक में सतो प्रधान समय होता है तब उसे सतयुग कहा जाता है, वो इसी धरती पर होता है। जब वो सतो सामान्य स्थिति में सृष्टि नाटक आता है तब उसे त्रेता युग कहा जाता है। जब सृष्टि नाटक रजो प्रधान समय में आता है तब उसे द्वापर युग कहा जाता है। और अपना सृष्टि नाटक जिसमें हम पाठ बजा रहे हैं वो तमो प्रधान स्थिति में पहुंचता है तब उसे कलयुग कहा जाता है। तो हम जिस युग में इस समय हैं वो कौन सा युग है? मानते हैं सभी? मानते हैं कलयुग है। तमो प्रधान क्यों है ये समय? तमो प्रधान क्यों है? क्यों है? क्या कारण है? क्यों तमो प्रधान है? क्योंकि आत्मा की मानसिक वृत्तियां, विचार वृत्ति और दृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है। आत्मा अपनी पवित्रता को खो चुकी है। पवित्रता की शक्ति उसमें है लेकिन उसे उसने भुला दिया है, खो दिया है। कहीं ना कहीं शरीर के भान में, विकारों के भान में हम जीने लगे हैं। और आत्मा की गिरावट के साथ प्रकृति में भी तमो प्रधानता आ गई है। तो शुरुआत कहां से हुई? मन के भ्रष्टाचार से। मन भ्रष्ट हो गया तो मन के भ्रष्टाचार ने प्रकृति में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अब प्रकृति भी पुरानी हो गई है तो हम देखते हैं कि प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो धरती है, आकाश है, पानी है, हवा है या अग्नि है, ये सारी चीजें अपने अति तमोप्रधान स्थिति में पहुंचने लगी है। धरती के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ा, इंसान के मन में भ्रष्टाचार बढ़ा और इसीलिए हर जगह जीवन में हमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। नैतिकता खत्म हो गई, जो दैवी गुण थे सतयुग में आत्मा में वो सब समाप्त हुए और इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ा। अब देखिए सृष्टि में पॉपुलेशन अपनी पीक में है, बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है। चार ऋतु जो बिल्कुल निश्चित समय पर आते थे, निश्चित मात्रा में आते थे, अब कभी अतिवृष्टि हो रही है तो कभी बारिश न होने के कारण सूखा झेलना पड़ रहा है। तो ये असंतुलन जो प्रकृति में हुआ है इसकी वजह कौन है? इसकी वजह कौन है? हम हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि आज भी हमें प्रकृति के साथ संतुलित रहने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी लेवल पर भी उस संतुलन को साधने की कोशिश करते हैं, मन से भ्रष्टाचार को निकाल देते हैं, तो हमारे लिए आज का युग भी, सारी दुनिया के लिए कलयुग है, सबको तकलीफ है, लेकिन हमारे लिए आज भी हम सतयुग का अनुभव कर सकते हैं अगर मन से विकृति, विकार, भ्रष्टाचार, पाप को निकाल दे। और पवित्रता का अनुभव करे, तो ये कलयुग है। तो चार युगों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि पर आकर ब्रह्मा के तन से हमें परिचय देते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, फिर मुझे पहचानो। उस परिचय देने के कार्य के बाद जो नया युग शुरू होता है उसे संगम युग कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। कलयुग से सतयुग आरंभ होने के बीच का समय उसे संगम युग कहा जाता है, जिस पर परमात्मा आकर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, और हमें हमारे अंदर के दैवत्व को जगाकर हमें मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं, वो संगम युग है। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सृष्टि का ये एक नाटक कितने समय का होता है? तो हाँ, परमात्मा शिव ने इस बात के रहस्य का उद्घाटन किया हम सभी के सामने। दुनिया आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि कितने साल की एक्चुअली में यह सृष्टि है। कई कहते हैं लाखों वर्षों से सृष्टि चलती आ रही है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं जो दिखाते हैं कि लाखों वर्षों से सृष्टि का अस्तित्व है। परंतु अब परमात्मा हमें कहते हैं सृष्टि नाटक का ये एक चक्र, दिन और रात का एक चक्र सृष्टि नाटक का 5000 वर्षों में चलता है। 5000 वर्ष, अगर 5000 वर्ष को हम चार भागों में विभाजित करें तो एक युग की आयु कितनी होगी? 1250 वर्ष। तो सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग भी 1250 वर्षों में चलता है, और उसके अंत के 100 वर्ष, कलयुग के अंत के 100 वर्ष जिसमें परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, उसको उसी को कॉन्फ्लुएंस ब्रिज, कलयुग से सतयुग में पहुंचने का ब्रिज, उसे संगम युग कहते हैं। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग कैसे थे? कलयुग कैसा है ये तो हमें पता है, अति पाप, अति भ्रष्टाचार, बुराई की चरम सीमा। लेकिन इसी धरती पर 5000 वर्ष पहले सतयुग था। कैसा था, कहां था सतयुग? कहीं आसमान में था या धरती के नीचे था? कहां था, कहां था? इसी धरती पर था। और सतयुग में इस समय जो विश्व 7 खंडों में विभाजित हुआ है ना, सतयुग में पूरी दुनिया में एक ही खंड होता है, एक ही खंड। और कौन सा खंड होता है वो एक खंड, उसे क्या नाम देते हैं? कौन सा खंड होता है? भारत खंड होता है। भारत, भारत जो इस समय है वो खंडित भारत है। सतयुग में जो भारत होता है वो अखंड भारत होता है। सब जानते हैं ना अखंड भारत क्या था, जिसके इतने सारे पार्ट्स अलग नहीं हुए थे। तो सतयुग में अखंड भारत होता है, एक ही खंड होता है। और सतयुग में होते कौन लोग हैं, कौन होते हैं वो देवी देवता? कौन होते हैं, हम होते हैं या कोई और होते हैं? हम मनुष्य जो इस समय परमात्मा के परिचय के साथ ज्ञान को अपने जीवन में लाकर अपने आप को दैवी बना रहे हैं, हम ही सतयुग में देवी देवता स्वरूप में होते हैं। परमधाम से सबसे पहले 2 आत्माएं इस सृष्टि पर आती है, लक्ष्मी और नारायण उनका बड़ा रूप है, लेकिन बचपन में उन्हें श्री कृष्ण और राधे कहा जाता है, 2 अलग अलग आत्माएं। और इसीलिए कई बार शास्त्रों में दिखाते हैं कि जल प्रलय हुआ और समुद्र में, सागर में 2 पत्तों पर श्री कृष्ण और राधे आएं। तो श्री कृष्ण और राधे उनका जन्म ट्रांसफॉर्मेशन के समय अलग अलग स्थान पर होता है। जब वो आयु की उस स्थिति में पहुंचते हैं कि जब उनका स्वयंवर हो सके, तब उनका स्वयंवर होता है और उन्हें ही लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। जब वो राज गद्दी पर बैठते हैं तब से सतयुग आरंभ होता है। तो सतयुग के लिए कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। अगर लक्ष्मी और नारायण देवी देवता है तो प्रजा में जो शुरुआत के 900,000 लोग होंगे वो भी क्या होंगे? देवी देवता। क्योंकि उस समय सभी दैवी आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि पर आएगी और अपने दैवी शरीर को जो प्रकृति से बना हुआ है उसको धारण कर अपने आप को देवी देवता कहलाएंगी। क्या विशेषता है देवी देवताओं की? देवी देवताओं की विशेषता क्या है? अक्सर आपने देवी देवताओं को रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए देखा होगा और देवी देवताओं के चित्रों के पीछे, उनके मस्तक के पीछे आपने उनके पवित्रता के प्रकाश को एक ऑरा के रूप में देखा होगा, है ना? तो देवी देवता होते हैं डबल ताजधारी, एक राजाई का रत्न जड़ित ताज और दूसरा मस्तक के पीछे प्रकाश का घेरा जो उनके पवित्रता की 100% प्योरिटी की निशानी। तो देवताएं होंगे डबल ताजधारी। यहां भारत में ही हम देवी देवता स्वरूप में जीवन जिएंगे। और क्या विशेषता होती है देवी देवताओं की? देवी देवताएं भी आपस में लड़ते होंगे, सभी दैवी गुणों से सर्वश्रेष्ठ नैतिकता से संपन्न जीवन पूरे भारत में 900,000 हम सभी आज तक गाते आए कि हमारा भारत एक दिन सोने की चिड़िया था। बिल्कुल ये निश्चय है कि भारत स्वर्णिम भारत था, सोने की चिड़िया था, जिसमें जो देवी देवताएं हैं, साधारण तो है नहीं वो आत्माएं, तो उनके रहने के लिए भी सोने चांदी और हीरे जवाहरात जड़े हुए महल होंगे जिसमें वो रहेंगे। क्यों सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से बने हुए महल होंगे? ईंट पत्थर की वहां जरूरत ही नहीं, इतनी विपुलता है कि महल बनाने के लिए उनको मिट्टी और पत्थर के आवश्यकता ही नहीं है। सोने चांदी की ही विपुलता इतनी है कि उनके महल और यहां की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी वहां सतयुग में काम आएगी। यहां हम सोलार की बात करते हैं, वहां सोलार काम आएगा। यहां हम संकल्प से विमान में उड़ने की बात करते हैं, उसके लिए इन्वेंशन करते हैं, वहां पर हमारे पास पुष्पक विमान भी होंगे। इस समय काल्पनिक लगता है लेकिन उस समय वो सब कुछ बिल्कुल सहज था। तो 900,000 प्रजा से शुरू हुआ सतयुग स्वर्ग 1250 वर्षों में एक आत्मा के सतयुग में 8 जन्म होते हैं। अब सतयुग में आत्मा की स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म होता है। सतयुग में अगर 900,000 प्रजा में एक ही धर्म होता है, कौन सा धर्म होगा सतयुग में? देवी देवता धर्म। एक भाषा होती है, कौन सी भाषा बोलेंगे सतयुग में? कौन सी भाषा बोलेंगे? देवनागरी, जिसको अभी हम हिंदी कहते हैं, देवनागरी भाषा होगी। आज से कुछ साल पहले जो कंप्यूटर में लिपि होती है हिंदी, उसको आज भी देवनागरी कहते हैं। तो देवों की भाषा कौन सी? देवनागरी, हिंदी भाषा। एक भाषा, एक मत, एक विचार से रहेंगे, अनेक विचार वहां नहीं होंगे और इसीलिए वहां सुख शांति और संपन्नता अपने चरम पर होगी। सुख शांति इस समय की हमारी बेसिक आवश्यकता है और संपन्नता, क्या आज हमें संपन्नता नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? संपन्नता चाहिए। तो जो सतयुग में हमारे पास सुख शांति और संपन्नता थी, वही सुख शांति और संपन्नता आज भी हमें अनुभव करनी है। तो मैं सवाल पूछूं आपको, सभी शांत है? शांत है, सभी शांत है, हाथ उठाए। शांत है, सभी सुखी है? थोड़ा सा डाउट है, सुखी है कि नहीं थोड़ा डाउट है। सभी संपन्न है? सब कुछ है, सब जो चाहिए वो सब कुछ है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, संपन्नता है। तो आज अगर हम सुख शांति और संपन्नता का अनुभव करेंगे, वही हम जाकर सतयुग में सुख शांति और संपन्नता का 100% अनुभव करेंगे। तो वहां पर थी ऐसी दुनिया में हमें जाना है। और क्या था वहां? बहुत कुछ है। बाबा ने मुरलियों में सतयुग का इतना अधिक वर्णन कर रखा है, एक एक चीज, क्या खाएंगे, 56 भोग कैसे खाएंगे, कैसे प्रकृति होगी। खासकर आप किसान हैं तो आपको ये जानने में रुचि होगी कि वहां की प्रकृति कैसे होगी। अगर आत्मा सतो प्रधान है तो प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। वहां फल कैसे होंगे, अन्न धान्य कैसे होगा, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो सतयुग के लिए क्या वर्णन किया जाता है, कभी कभी हमने शास्त्रों में सुना है, सदाबहार तो होंगे ही, शेर और बकरी जैसे जानवर एक घाट पर पानी पिएंगे, संपूर्ण अहिंसा होगी। हिंसा 2 प्रकार से होती है, एक है काम विकार की हिंसा और दूसरी है मारने की हिंसा। तो इसीलिए सतयुग के देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अच्छा, काम विकार की हिंसा वो करेंगे नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? योग बल से। देवी देवता आत्माओं में इतनी शक्ति होगी पवित्रता की, संकल्प से सृष्टि का निर्माण, बच्चे भी होंगे संकल्प से होंगे। और ऐसे नहीं इस समय की तरह अचानक मृत्यु होगी, नहीं, 150 वर्ष की आयु पूरी तरह से जी लेने के बाद आत्मा को महसूस होगा कि अब ये शरीर मुझे छोड़ना है। तो बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं कि जैसे सांप अपनी पुरानी खाल छोड़ता है और भीतर में उसकी नई खाल उसको मिली हुई रहती है, उसी तरह से, देखिए किसी ने सांप की खाल, देखिए ना, आप लोग तो देखते ही होंगे, तो उसी तरह से आत्मा अपना एक शरीर खुशी खुशी छोड़ देंगी और उसे पता होगा कि दूसरे शरीर में अब मैं प्रवेश करने जा रही हूं। क्योंकि वहां पर सतयुग में हम सबकी 100% आत्म अभिमानी स्थिति होती है, शरीर का भान होता ही नहीं। हालांकि शरीर हमारे सबके बहुत सुंदर होते हैं, देवी देवताओं के चित्र देखे हैं ना आपने, कितने सुंदर होते हैं, उनके जैसी सुंदरता कंपेयर करके भी आज किसी को भी नहीं मिल सकती है। विश्व सुंदरी नाम बताते हैं, लेकिन देवी देवताओं जैसी सुंदरता किसी के शरीर में हो सकती है? तो वैसी सुंदरता हमारी होगी। और ऐसा सतयुग 1250 वर्ष चलेगा, जिसमें हम 8 जन्म लेंगे, 150 वर्ष तक लंबी आयु, निरोगी आयु जिएंगे, चिर तरुण स्थिति में रहेंगे, वृद्धावस्था वहां होगी नहीं, बाल पकना, दांत टूटना, घुटने में दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, ये सब कुछ वहां होगा ही नहीं। तो ऐसी दुनिया में कौन कौन चलने के लिए तैयार है? ये कल्पना तो नहीं लगती ना आपको, कल्पना तो नहीं लगती ना, नहीं, ये हकीकत है, होगा। सतयुग के बाद त्रेता युग को सतो सामान्य स्थिति आत्मा की होती है, लेकिन उसको हम सेमी स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जो भी वर्णन किया बिल्कुल वैसा ही त्रेता युग में होगा। थोड़ी सी आत्मा की पवित्रता की शक्ति कम होगी, जहां पर देवी देवताओं को 16 कला संपन्न कहा जाता था, वहां पर त्रेता युग में उन्हें 14 कला संपन्न, दो कलाएं कम हुई, 100 में से केवल 20 या 10% की कमी आई। तो त्रेता युग में राम सीता का राज्य रहा, जहां पर प्रजा भी सुखी और राजा राम है तो सुख शांति और समृद्धि वहां भी होती है। जो भी सतयुग का वर्णन हमने किया वैसा ही त्रेता युग में भी होता है। लेकिन जहां पर सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, त्रेता युग में उसी धर्म को क्षत्रिय धर्म कहा जाता है। इसीलिए राम के हाथ में धनुष दिखाते हैं, तो इसका मतलब राम रावण से लड़ाई करते हैं, इसलिए धनुष दिखाया है। सतयुग में होते हैं कृष्ण, तो क्या कृष्ण के साथ कंस भी होते हैं सतयुग में? नहीं। त्रेता युग में होते हैं राम, तो क्या राम के सामने रावण भी होते हैं? नहीं। जब श्री कृष्ण और राम की दुनिया होती है, दिन होता है सृष्टि का, तब किसी भी प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियां विश्व में होती ही नहीं। इसीलिए कृष्ण के समय न कंस थे, न राम के समय रावण हो ही नहीं सकते, ना ही राम की सीता चोरी हो सकती है ना। राम तो श्रेष्ठ आत्मा थे। तो सतयुग और त्रेता युग ये है काल चक्र का दिन, जिसमें 1250 और 1250 2500 वर्षों तक पूरी सृष्टि में केवल भारत होता है, और उस भारत में राम राज्य, सुख शांति और संपन्नता, एक धर्म, एक भाषा, एक मत और एक परिवार की तरह से पूरा भारत 2500 वर्षों तक हमने ये सुख भोगा है, उसको सृष्टि का दिन कहते हैं। और त्रेता युग में जैसे सतयुग में एक व्यक्ति के, एक आत्मा के 8 जन्म होते हैं, उसी तरह त्रेता युग में एक आत्मा के 12 जन्म होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयु थोड़ी सी कम हुई, लेकिन जन्म और मृत्यु की पद्धति सेम, संकल्प से जन्म और संकल्प से ही मृत्यु। तो 2500 वर्षों तक हम सभी ने संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता का अनुभव किया है, और इसीलिए हम आज यहां बैठे हैं। अपने लिए खुश है? खुश है ना? अपने लिए बहुत खुश है। अब 2500 वर्षों के बाद क्या हुआ? तो आया द्वापर युग। क्यों आया द्वापर युग? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताएं जो भारत की जनसंख्या थी जब द्वापर युग शुरू हुआ, उनकी पवित्रता की, आत्मा की पवित्रता की शक्ति 50% रह गई। 16 कला से 8 कला ही बची, और उन 8 कलाओं के साथ 50% आत्मा की शक्ति के साथ हम अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सके। वो दैवी शक्तियां, जो क्राउन था ना हमारे मस्तक के पीछे पवित्रता का, वो गुम हो गया, खत्म हो गया, वो दिखाई देना बंद हो गया, है ना? तो फिर हमने आपको देवी देवता नहीं कह सके, तो अपने आप को हमने हिंदू कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। तब भी एक ही धर्म था, हिंदू था, लेकिन पवित्रता की शक्ति नहीं रही, इसीलिए विकार प्रवेश हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत और बदले की भावना। ये रावण 10 सिर वाला सभी रामों के, आत्मा रामों के अंदर आ गया। और इस रावण ने क्या क्या करवाया हमसे, क्या क्या करवाया? एक तो शक्ति नहीं रही, इसलिए जन्म के लिए काम विकार की आवश्यकता महसूस हुई, काम विकार को इस्तेमाल किया। मृत्यु भी अनिश्चित हुआ, क्योंकि कर्म विकर्म बन गए। जहां सतयुग और त्रेता युग में हमारे कर्म अकर्म थे, अकर्म का अर्थ है कि ऐसे कर्म जो केवल हम खर्च कर रहे खा रहे उसका कोई फल नहीं है, और जो भी फल मिल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो द्वापर युग से हमारे कर्म विकर्म होने लगे, जो भी कर्म किए वो विकारों के वशीभूत उल्टे ही हुए। लोभ और लालच इतना बढ़ा कि मेरे पास जो कुछ भी है राजाई उससे मुझे अधिक चाहिए, डबल चाहिए, इसीलिए मेरे पड़ोस में जो राजा है या जो भी है उन पर मैं आक्रमण करूं। ये बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, ये रावण घुस गया अंदर, भ्रष्ट बुद्धि शुरू हुई, और लोभ लालच के वश दूसरों का छीनने की भावना हमें आ गई, तो हमने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू किया, युद्ध करना शुरू किया। और युद्ध में हमने क्या हासिल किया? एक तो उनकी पूरी जमीन, उनका राज्य, उनके महल, उनके पास का सारा गोधन, उस समय हमारे पास गोधन बहुत था, वो सारा हासिल किया। लेकिन राजा पर भी हुकूमत चलाई, उसको भी अपने अधीन कर लिया, लेकिन राजा की जो पत्नियां थी उनके साथ क्या किया? तो तब भी हमारे अंदर थोड़ी सी मर्यादा बची थी, और इसीलिए दूसरे राजा को जब अपने अधीन बनाया तो उनके महल में जो भी स्त्रियां थी उनको एक श्रेष्ठ दर्जा देने के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, अपने राजमहल में रखा, लेकिन उनको एक अच्छा दर्जा दिया, और तब से पुरुष प्रधान संस्कृति का आरंभ हुआ। आत्मा जिसे पुरुष कहा जाता है उसने अपने शरीर पुरुष को अहंकार का कारण बनाया, और पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों को दोयम दर्जा, सेकेंडरी पोस्ट मिलना शुरू हुआ, स्त्रियों की प्रताड़ना शुरू हुई, और इसीलिए उनको बचाने के लिए, रावण की वृत्ति वाले पुरुषों से बचाने के लिए उनको पर्दे में रखा गया। आपने देखा होगा पुराने राज महलों में रानियों का वास अलग अंदर कहीं होता था, उनको झरोखों से देखने की इजाजत होती थी, बाहर पुरुषों के साथ आने का उनको परमिशन नहीं था। क्यों? उनकी इज्जत को बचाने के लिए। वहां से गिरावट शुरू हुई। अब हिंदू धर्म था, अपने आप में इतनी शक्ति नहीं थी, तब उस समय परमपिता परमात्मा को याद करने की आवश्यकता महसूस हुई कि अगर मुझ में शक्ति नहीं है तो मुझे किसी से लेनी है। सतयुग त्रेता युग में परमात्मा की याद करने की आवश्यकता नहीं हुई, हम ही संपन्न थे, श्रेष्ठ थे, पवित्र थे। तो द्वापर युग में जब परमात्मा को याद करना आरंभ किया तो किसी ने कहा कि वो तो निराकार है, अभी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उससे हमें निराकार का परिचय है, वो शक्ति है, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। भाई लोगों ने कहा आंखों से नहीं देखा जा सकता तो उनको याद कैसे करेंगे, इसलिए उनका चित्र चाहिए। तो चित्र के लिए उन्होंने क्या किया कि नदी के बहाव में बहकर आने वाले जो लंब गोलाकार पत्थर थे, परमात्मा ज्योति है ना, तो उन लंब गोलाकार पत्थरों को किसी स्थान पर रखकर उसके आसपास मंदिर बनाना आरंभ किया, और उसी लंब गोलाकार पत्थरों को जो ज्योति के आकार के थे उसको उन्होंने शिवलिंग कहना शुरू किया, और उसके ऊपर तीन लाइनों के बीच में एक बिंदु लगाया। वो बिंदु परमात्मा का रूप था परंतु इन आंखों से हम देख नहीं पाए, इसीलिए उनको शिवलिंग का आकार दिया। तो पहले पहले शिवलिंग के मंदिर बने राजाओं के द्वारा, जहां पर जाकर शिव का ध्यान करते थे। कई राजा भी जिनको अपने राज्य कारोबार से विरक्ति आ जाती थी वो भी संन्यास धर्म को स्वीकार करते थे। क्यों विरक्ति आती थी? क्यों? वहां भी विकार थे, बुराई थी, और विकारों में हमेशा अशांति होती है। तो राज्य है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, इसलिए संन्यास धर्म स्वीकार करते रहे। कई राजाओं ने ऐसा किया। तो हिंदू धर्म में ही दो पुर हो गए, दो ब्रांचेस हो गई, दो विचार हो गए, एक निराकार को मानने वाले और एक निराकार को ही साकार स्वरूप में पूजने वाले। इसीलिए उस युग को द्वापर युग कहा गया। अब हिंदुओं में आपस में एकता नहीं रही, हिंसा बढ़ गई, पाप बढ़ गया, तो परमपिता परमात्मा ने अपने एजेंट्स को नीचे भेजना शुरू किया, धर्म गुरुओं को, कि जाओ मेरे बच्चों को वो फिर से याद दिलाओ कि वो एक थे और एक पिता की संतान है। तो कई धर्म गुरु आए, इब्राहिम आए, जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया कि वो एक है, हम सब के पिता है, हम एक परिवार है। कुछ लोगों को जो आदि भारतवासी हिंदुस्तानी थे, उनको उनकी बात अच्छी लगी और उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप तैयार किया, इस्लाम शुरू हुआ। और जैसा कि हमने कहा कि राजाओं को विरक्ति आने लगी, तो हम जानते हैं गौतम बुद्ध और महावीर कैसे बने, वो भी राजा थे। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया और परमात्मा ने फिर उन्हें नियुक्त किया कि आप इस बात का प्रचार करो, लोगों में जो दैवी गुण है उनको जगाने की कोशिश करो। इसीलिए गौतम बुद्ध बने, जिन्होंने एक परमात्मा की याद में तपस्या कर वो ज्ञान प्राप्त किया और विश्व भर में फैलाने की कोशिश की। जो जो भी उनके संपर्क में आए, जिनको वो बात समझ में आई, उन्होंने अपने आप को गौतम बुद्ध के द्वारा शिष्य बने, इसीलिए बौद्ध धर्म का कहना शुरू किया। इसी तरह धर्मों की ब्रांचेस बनती गई। फिर महावीर भी एक राजा ही थे, उन्होंने वैराग आया, ज्ञान प्राप्त हुआ, तपस्या की, ज्ञान की खोज में जहां तहां भटके और फिर लोगों में दिव्यता का, एकता का प्रचार किया और उनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना हुई। गुरु नानक देव जी आए, 24वें तीर्थंकर है सिख धर्म के गुरु नानक देव जी। तब तक 23 तीर्थंकर होकर गए थे, 24वें गुरु नानक देव जी आए। उन्होंने देखा कि इन मनुष्यों को सभी ने एकता का ज्ञान हमेशा से दिया, एक परमात्मा का परिचय दिया, लेकिन ये लोग गुरुओं में फंस रहे हैं, देहधारी गुरुओं में फंस रहे हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने गुरु परंपरा को बंद किया कि देहधारी कोई गुरु नहीं है, सब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, सबको हमें हम सबको उन्हीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उस ज्ञान को गुरु समझो, किसी व्यक्ति को गुरु मत समझो। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब से गुरु प्रथा बंद। तो गुरु कौन? ग्रंथ ही गुरु है। ग्रंथ में उन्होंने जीवन की शिक्षाओं को लिख कर रखा, उन शिक्षाओं को पढ़ने की बजाय उनको बंद करके उनकी पूजा करना हमने आरंभ किया। चाहे गीता भी बनी, ज्ञान की पुस्तक है जिसको पढ़कर जीवन में लाना है, उसकी जगह हमने उस पुस्तक को पूजा घर में रखा, उसकी पूजा की। हम कहते हम गीता को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम बाइबल को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम कुरान को मानते हैं। तो हमारे एक वरिष्ठ भ्राता थे जगदीश चंद्र हसीजा जी, जिन्होंने ये सारी किताबें जो अभी मिल रही है लिटरेचर में, वो किताबें लिखने के लिए वो निमित्त बने। वो हमेशा पूछते थे अपनी क्लासेस में, गीता को मानते हो या गीता की मानते हो, बाइबल या कुरान को मानते हो या बाइबल या कुरान की मानते हो, क्या फर्क है? की मानकर चलना चाहिए ना, लेकिन हम पुस्तक को मानते, उसकी पूजा करते हैं, बंद करके रख देते हैं अच्छे कवर में डालकर। अब परमात्मा ने आकर वही ज्ञान दिया है जो अनेक अनेक धर्म शास्त्रों में, जो ज्ञान की बातें लिखी है उसको सत्य ज्ञान परमात्मा आकर दे रहे। क्यों परमपिता परमात्मा शिव को धरती पर आना पड़ा सत्य ज्ञान देने के लिए? क्योंकि जो भी ज्ञान धर्म गुरुओं ने दिया उन्होंने तो सत्य ही दिया, लेकिन हमने उसको अपने मतलब से, स्वार्थ से, जैसा हमें सही लगा वैसा इस्तेमाल किया और इसीलिए भटका हुआ। तो द्वापर युग में अनेकानेक धर्म बने, वही 1250 वर्ष, लेकिन जन्म मृत्यु की पद्धति बदल गई। अब स्वर्गवासी हम नहीं रहे, अब हम नरकवासी बन गए, क्योंकि कृष्ण के जो आत्मा थी उनमें कंस और रावण की प्रवृत्तियां भी शामिल होने लगी। तो यहां पर द्वापर युग में हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जंगलों में जाकर तपस्या की, उन्होंने वहां बैठकर धर्म शास्त्र की रचना की, गीता, रामायण, महाभारत, क्योंकि राम और कृष्ण होकर गए थे हमारे इस भारत में, जिनके चरित्र इतने ऊंचे थे, उनके चरित्रों को उन्होंने लिखना शुरू किया। जब लिखा तब उस समय इंसान की आत्मा में, प्रवृत्ति में रावण और कंस प्रवेश कर चुके थे, तो उन्होंने राम के साथ रावण को दिखाया कि कैसे रावण है प्रतीक, 10 सिर किसी के नहीं होते, ना देवताओं के ना असुरों के। रावण हमारे अंदर के 10 विकारों का प्रतीक है, इसीलिए उसके 10 सिर दिखाते हैं, प्रतीकात्मक छवि है। उस छवि का निर्माण ग्रंथों में हुआ और दिखाया कि राम और रावण की लंबी लड़ाई चली, कारण भी क्या बना और उस लंबी लड़ाई के बाद विजय किसकी हुई, अंतिम राम की हुई। तो हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों प्रवृत्तियां छिपी हुई है। जो रामायण में युद्ध दिखाई है वो हमारे अंदर के राम के की रावण के साथ की युद्ध है, उसको आप समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने जिस कुरुक्षेत्र की के ऊपर युद्ध किया वो कुरुक्षेत्र इस समय है, जिस पर हम पांडव खड़े हैं, परमात्मा के प्रीत बुद्धि जो होते हैं उनको पांडव कहा जाता है, और वो पांच दिखाते हैं। पांच क्यों, पांच उंगलियां मिलाकर क्या बनती है, मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी क्या दिखाती है, शक्ति दिखाती है, एकता दिखाती है, और पांच अगर मिल जाए तो 100 का सामना कर सकते हैं आसुरी प्रवृत्तियों का। पांच पॉजिटिविटी अगर मिल जाए तो करोड़ों नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं। ये है पांडव और कौरवों का युद्ध जो कि हमारे अंदर, हमारे यहां चल रहा है। तो प्रीत बुद्धि पांडव और परमात्मा से विपरीत बुद्धि कौरव, वो अनेक है। ये अब कुरुक्षेत्र की बात परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। तो द्वापर युग में 1250 वर्षों में एक आत्मा के 21 जन्म हुए। क्यों इतने ज्यादा जन्म हुए, क्योंकि आत्मा की पवित्रता की शक्ति 50% रही। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन का समय है वो काल कम हुआ और जन्म बढ़े। तो द्वापर युग में 21 जन्म हुए और फिर आया कलयुग। धर्म की शुरुआत हुई द्वापर युग में अनेक धर्मों की, हिंदुओं में से ही बटकर अलग 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 धर्मों को लोगों ने अपनाया, और कलयुग में सभी धर्म क्या हो गए, अपनी तमोप्रधान स्थिति में पहुंच गए, अधर्म में बदल गए, सभी धर्म भ्रष्ट हो गए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। क्योंकि धर्म भ्रष्ट क्यों बने हम, क्योंकि धर्म अर्थात बाबा जो कहते धारणा, वो धारणा हमारे जीवन में नहीं रही। धर्म ने जो हमें सिखाया वो हमने जीवन में धारण करके नहीं चले, इसीलिए हम सभी धर्म भ्रष्ट बन गए। तो कलयुग में धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बने, और इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव को खुद आना पड़ा, इसलिए भी उनको खुदा कहते हैं। खुद आना पड़ा, आकर हमें ये ज्ञान देना पड़ा, सत्य ज्ञान देना पड़ा, और सत्य ज्ञान से ये बताना पड़ा कि हम सभी का, आत्मा का धर्म एक है। शरीर के धर्म हमारे अलग अलग हो सकते हैं, हम सबकी आत्मा का धर्म क्या है, क्या है? एक है लेकिन क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ये हमारा असली धर्म है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो परमात्मा को इस सत्य धर्म की स्थापना के लिए खुद, क्योंकि उनके आने के बिना एक धर्म स्थापन नहीं हो सकता था, इसलिए वो आए। इसीलिए गीता में जो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, ऐसे समय पर परमात्मा ने आकर ज्ञान से हमारे अपने सत्य धर्म का परिचय हमें दिया और हमें दैवी गुणों की धारणा करवाई। और इसीलिए हम सबका धर्म सबसे पहले है ब्राह्मण धर्म। परमात्मा शिव आकर ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, हमारे दैवत्व का परिचय कराते हैं। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली हम हैं, इसलिए हम सभी यहां कौन बैठे हैं? ब्राह्मण, धर्म से भी और कर्म से भी। धर्म ब्राह्मण है तो कर्म ब्राह्मण कैसे है हमारे? शुद्ध अन्न, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध पहनावा। तो जीवन शुद्ध बना, इसीलिए हम कर्म के ब्राह्मण हैं। उस दुनिया में जाति से ब्राह्मण खुद को कहलाने वाले होते हैं, जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए वो करते हैं, लेकिन हम कर्म से ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली है, इसीलिए हमें ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस समय हम सब कौन हैं सभा में? ब्राह्मण, और वो देवी देवता बनने वाले हैं। तो कलयुग में सब कुछ अति हुआ, 1250 वर्षों में एक आत्मा के 42 बर्थ्स हुए, अचानक मृत्यु और जन्म में भी विकृतियां आने लगी। आजकल कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें संपूर्ण अच्छी स्थिति में ही पैदा हो जरूरी नहीं है, विकृतियां आने लगी और मृत्यु भी अचानक, इतनी भयानक तरीके से मृत्यु कई बार होता है। हम देखते हैं भूकंप होता है, बाढ़ आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, लाखों करोड़ों लोग, अभी परसों ट्रेन का हादसा हुआ, कितने ही लोगों की मौत हुई। ये कलयुग की रीत है, कलयुग में इसी तरह से अचानक मृत्यु होती है। अब अगर हमें संकल्प से मृत्यु को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? हमारी मृत्यु, क्या हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी दुखद मृत्यु हो? चाहते नहीं, कोई नहीं चाहता है। अगर हमारी मृत्यु श्रेष्ठ होनी चाहिए तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्या मृत्यु के लिए सभी तैयार है? कलयुग है, अंत है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मेरे आसपास के मेरे आप्त स्वकीय है उनकी भी हो सकती है, उनके लिए भी तैयार रहना है, अपने लिए भी तैयार। ये घड़ी हम यहां बैठे हैं, ये भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। ये जून का महीना चल रहा है, इस महीने में हम ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा को याद करते हैं, जो जिनको मम्मा कहा, सरस्वती, जगदम्बा, राधे जिनका नाम था, वो हमेशा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। उनका ये शिक्षा थी कि ये समय हमारा लास्ट समय है। तो परमपिता परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान दे रहे 1200, अब 5000 वर्ष के इस पूरे चक्र में 8, 12, 21 और 42 टोटल जन्म कितने हुए एक आत्मा के? 83 जन्म हुए, 8, 12, 21 और 42 83 बर्थ हुए। और अब आपको एक नया जन्म मिला, इसी जन्म में ये हमारा नया जन्म हुआ, क्योंकि इस जन्म में हमने परमात्मा शिव को जाना, अपने आप को जाना, तो हमारे लिए ये नया ब्राह्मण जीवन है, इसे 84वां जन्म कहा जाता है। तो 5000 वर्ष और 84 जन्मों की ये कहानी है जो शिव बाबा ने हमें अपनी जुबानी समझाई है। समझ में आ रही है? आ गई समझ में? तो 84 जन्मों की ये कहानी है। सतयुग से हमने शुरू किया था, कलयुग में हम अंत करेंगे, अंत के बाद एक बार परमधाम में जाएंगे और परमधाम से पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आएगी और धीरे 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 हम जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी। अब पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है, पॉपुलेशन का भी एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, और इसीलिए फिर भी प्रकृति तो देखिए हमारी माँ है, हम सबको पूरा हो जाए इतना अनाज तो वो दे ही रही है, चाहे जितने भी प्रकृति के बच्चे हैं, लेकिन हमारी वृत्ति के कारण कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है। तो खैर ये ड्रामा है 5000 वर्ष का, और बाबा ने कहा इस ड्रामा में हर समय आना ही है। तो क्या हमें ये ड्रामा एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट करते हैं हम? ठीक है, ड्रामा के रहस्य को जान लिया हमने, 5000 वर्ष 84 जन्म मनुष्य जन्म ही होंगे, देवता थे अब मनुष्य बने हैं, फिर से देवता बनना है। अब ड्रामा के सीक्रेट जो हमें कर्म में इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले पहला ड्रामा का सीक्रेट जो हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, बाबा ने कहा है ये जो ड्रामा मैंने बनाया है खेल, वो आपके लिए कल्याणकारी है। ये बात आज के दिन नोट करके रखना, ये ड्रामा जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, अच्छा या बुरा, मेरे लिए कल्याणकारी है। जब कभी कोई बुरी बात होती है, बुरी घटना होती है, तो लगता है या क्या ये मेरा कल्याण था? नहीं, थोड़े समय के बाद पता चलता है कि अरे यही में, इसी में मेरा कल्याण था, क्योंकि बाबा हम सब के पिता हैं, हमारा अकल्याण वो कभी नहीं करते हैं। तो जो हो रहा है दूसरा कारण है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे पुराने बुरे कर्मों का वो फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो दो तरीके हैं फल को भुगतने के, एक है खुशी खुशी बाबा के ज्ञान और योग के आधार से कर्म के हिसाब किताब को चुप तू करो खुशी खुशी, और दूसरा है रोते बिलकते दुख परेशानी के साथ चुप तू करो। कैसे चुप तू करना सही है? खुशी खुशी, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे शरीर की बीमारी है, चाहे संबंधों में कुछ टकराव है, या फिर धन संपत्ति का नुकसान है, वो सब कुछ मेरे कर्म का फल है और इसी में मेरा कल्याण है। क्या ये बात हम याद रख सकते हैं? तो दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, और जो भी कर्म का हिसाब किताब है जल्दी जल्दी चुकतू करेंगे और खुशी खुशी चुकतू करेंगे, है ना, मुस्कुराते हुए। आता है मुस्कुराने? दिखाइए तो सही कैसे मुस्कुराते हैं आप, है ना, कितने अच्छे दिखते हैं जब हम मुस्कुराते हैं। तो जो भी हिसाब किताब है खुशी खुशी चुकतू करना है, ये ड्रामा का सीक्रेट है। इस ड्रामा में भी जो कुछ भी हो रहा है, इस समय आपको लगता है कि अरे प्रकृति के इतने प्रकोप हो रहे हैं, इतनी बुराई हो रही है दुनिया में, इतना कुछ हो रहा है, संकल्प चलते हैं ना पॉलिटिक्स में, ये हो रहा है इधर, ये हो रहा है, बहुत सोच चलती है, उसी के मारे हम डर से सो नहीं पाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है हम सब के कल्याण के लिए हो रहा है। ये होगा तब तो सृष्टि का विनाश होगा, खत्म होगी पुरानी दुनिया, तो ये सब कुछ हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। तो उसमें निश्चिंत रहना है, खुश रहना है। अब निश्चिंत कैसे रहेंगे, निश्चिंत कैसे रहेंगे, जिसका साथी हो भगवान, क्या कहते आगे, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जो निश्चय बुद्धि होंगे, एक बाबा और एक परिवार एक ज्ञान, इस निश्चय पर जो होंगे वो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो निश्चिंत रहने की विधि क्या है, निश्चय, निश्चय पक्का होना चाहिए, बाबा में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, उसके भी पहले बाबा ने अपने आप में निश्चय करना सिखाया। तो कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसका निश्चय अपने आप में है, बाप में है, और उसके ड्रामा में है, उसका विजय निश्चित है। ठीक है, तो ये भी सीक्रेट याद रखना है। और तीसरा सीक्रेट, फुल स्टॉप, बिंदु। जो कुछ हुआ, जो बीत गया, जो बीत गई वो बात गई कहते हैं ना, तो हर बार फुल स्टॉप लगाना हमें सीखना है। तो आज हम तीन बिंदुओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। कौन से तीन बिंदु? मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप। कल तक जो कुछ हुआ, हाँ कल तक जो कुछ हुआ अच्छा या बुरा, उसमें से जो मैंने सीखा, जो मैंने अनुभव किया, उसको अपने साथ लेने लेकर जाना है, बात को या व्यक्ति को नहीं लेकर जाना है। ठीक है, समझ में आया काल चक्र का रहस्य? ठीक है, किसी को कोई सवाल है? नहीं है, सब भरपूर है, पूर्ण है। ठीक है, ओम शांति।